ओम शांति। सभी मधुबन में आए हैं, किस लिए कि विशेष अपने में शक्ति भर करके और फिर वही शक्तियां जा करके औरों को भी दें। तो कई भाई बहने ऐसे कहते हैं कहने में कि बैटरी चार्ज करने आई है, ढीली हो गई, चलते चलते जैसे बैटरी ढीली हो जाती है ना, तो फिर चार्ज किया जाता है। तो कई भाई बहन कहते हैं बैटरी चार्ज करने आए हैं क्योंकि वहां जाकर के वायुमंडल के कारण थोड़ा बहुत ढीला हो जाता है, तो बाबा को ये बोल पसंद नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं कि चाहे वहां रहते हो चाहे यहाँ आते हो, लेकिन बाबा तो वहां भी साथ है या सिर्फ मधुबन में है, वहां भी साथ है ना। तो जब बाबा साथ है हमारे, तो बाबा के साथ होने के कारण बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं होनी चाहिए ना, चार्ज होनी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कहो कि बैटरी कमजोर हो गई, उसको ठीक करने आए हैं, भरने आए हैं, लेकिन चार्ज है बैटरी और एक्स्ट्रा शक्ति भरने आए। तो चार्ज में चार्ज भले कराओ, लेकिन डिस्चार्ज होके चार्ज करने आए हैं ये बाबा को पसंद नहीं आता। लेकिन क्या होता है, कई लोग समझते हैं कि वहां का वायुमंडल होता है ना, कई भाई बहने ऐसे कहते हैं कि दफ्तर में जाओ कहां भी जाओ, तो कितने लोग तो होते हैं अज्ञानी, हम दो चार ज्ञानी होते हैं, तो इतने हजारों के अंदाज में जो अज्ञानी है उनका वायुमंडल का असर हमारे ऊपर हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा है और हम कम हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये राइट है, ये कहना राइट है, हाँ है राइट, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, थोड़ी थोड़ी कमजोरी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वायुमंडल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने जब ब्राह्मण बने तो बाबा के साथ सेवा में भी साथी बने, बने है ना साथी, अकेला बाबा क्या करेगा, अकेला कर सकता था तो परमधाम में बैठ करके ही कर लेता, लेकिन यहाँ आया है, कहते भी है, शास्त्रों में भी गायन है कि प्रजापिता ने जब यज्ञ रचा तो यज्ञ के पहले ब्राह्मण रचे और फिर यज्ञ रचा, तो उसको ब्राह्मण यानी बच्चों की आवश्यकता है ना, तो जब बच्चों की उसको आवश्यकता है हम सब की, तो हमारे साथ साथ बाबा है। और बाबा भी कहते मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी बच्चों के साथ करता हूँ, तो हमारा साथ बाबा के साथ है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोगों ने पहले ही बाबा के साथ ये वायदा किया है कि हम इस पुरानी दुनिया को नहीं बनाएंगे। कोई भी पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि ब्राह्मण जीवन में हमारी सेवा क्या है, इतनी प्रदर्शनियां करते हो, मेले करते हो, जो भी कुछ करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? परिवर्तन करने के लिए ना, पुरानी को नई बनाने के लिए, विश्व को तमोगुणी से सतोगुणी बनाने के लिए ही तो करते हैं ना। तो जो विश्व को बदल सकते हैं वो एक दफ्तर के या दुकान के या घर के वातावरण को नहीं बदल सकता, ठेका तो लिया है विश्व को बदलने का, और एक दफ्तर के वातावरण में भी हम असर में आ जाए तो सभी क्या हंसेंगे ना, क्या कहते क्या है और होता क्या है। जैसे देखो कोई हम हमेशा सुनाते हैं, देखो कोई डॉक्टर होता है, टीबी का डॉक्टर है मानो, अभी टीबी के जर्म्स उसको पता है फैलते हैं, और टीबी का डॉक्टर कहे तो मैं क्या करूं, वो जर्म्स ही ऐसे है टीबी के, इसलिए मैं टीबी का डॉक्टर हूं ना, तो मैं भी टीबी का पेशेंट हो गया क्योंकि जर्म्स ही ऐसे है। तो उसके ऊपर सब हंसेंगे ना, वाह डॉक्टर वाह, तुम ऐसा कमजोर है क्या। अभी आग बुझाने वाले जाते हैं तो आग का सेक तो होता ही है, सबको पता है, लेकिन आग बुझाने वाले जो है वो ही जल करके खत्म हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। वो कह सकते हैं ऐसे कि आग का बहुत सेक था ना, इसीलिए हम सब बुझाने वाले जली गए। तो ये क्या हुआ, हमारा भी तो ऐसा ही हुआ ना। हम कहते हैं हम विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, पांच तत्वों को भी बदलने वाले हैं, और मनुष्यों के वाइब्रेशन के असर में आ जाएं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए हमको कभी भी ऐसे स्थान पर जाना होता है जब हम समझते हैं कि यहाँ का वायुमंडल ऐसा है, तो पहले से ही अपनी तैयारी करके जानी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडर होते हैं तो आग बुझाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले अपनी ड्रेस पहनते हैं, अपने साधन अपना करके जाते हैं ना। इसी रीति से हमको अपनी स्थिति को पक्का करके जाना चाहिए, जिससे हमारा वाइब्रेशन उन्हों के ऊपर पड़े, लेकिन उन्हों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए क्या है? तो उसको क्या कहेंगे, कमजोर कहेंगे या अच्छा महावीर कहेंगे, कमजोर कहेंगे ना उसको। इसीलिए बाबा कहते हैं, और कई कहते हैं क्या करें हम बहुत थोड़े है ना, वो बहुत है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को अपने कल्प पहले की याद भूल गई है। पांडव कितने थे और कौरव कितने थे, फिर जीत किसकी हुई, पांडवों की हुई ना। तो क्यों पांच पांडवों की जीत क्यों हुई, कारण क्योंकि शिव बाबा साथ था। तो हमारे साथ नहीं है क्या, और वो पांडव कौन से थे, दूसरे थे क्या, हम ही थे ना। तो जब कल्प पहले भी हम पांच पांडव यानी थोड़ी संख्या, तो कल्प पहले भी हम थोड़ी संख्या होते हुए हमने विजय प्राप्त की है, कई बार कर चुके, कोई नई बात थोड़ी है। तो ये फिर हमको क्यों आता है कि सारे घर में बहन जी कई आकर के कहते हैं, बहन जी आपको क्या पता घर का वातावरण ऐसा होता है, और गृहस्थी में आपको तो अनुभव ही नहीं है ना, हमको अनुभव है कि क्या होता है, आप लोग तो सेंटरों पर बैठी हो बहुत आराम से, हम लोगों को पता है क्या वातावरण होता है। तो इसीलिए असर हो ही जाता है। तो हम लोगों को भी आके वो बताते हैं कि आपको अनुभव नहीं है, हम कहते अनुभव करना ही है क्या, जहर का अनुभव करके देखा जाता है क्या कि जहर है ठीक या नहीं है। तो हमको पता है कि ये क्या होता है, तो हम भी अनुभव करके ही समझेंगे क्या, हम तो आपके अनुभव सुन करके ही अनुभव कर लेते हैं कि क्या होता है। इसीलिए कितना भी वातावरण हो घर का, घर में तो होता ही है, अंश बगले कट्ठे तो रहते ही है, ये तो होता ही है ना, क्योंकि सारी दुनिया का थोड़ी कोई पार्ट है। सारी दुनिया के अभी जो भी है 450 करोड़ आत्माएं, अगर सारे ही सतयुग में चले जाएंगे तो फिर तो सतयुग भी कलयुग ही हो जाएगा। इतनी संख्या वहां चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। तो सभी तो कोई ऐसे बाबा के बच्चे बनने नहीं है, और हंस और बगले वायुमंडल तो ये रहना ही है। इसीलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वायुमंडल ऐसा है, सरकमस्टेंस ऐसे है, मेरे घर का वातावरण क्या परिस्थितियां ही ऐसी है। लेकिन क्या भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं स्व स्थिति श्रेष्ठ होती है या पर स्थिति श्रेष्ठ है। स्व स्थिति है ना, वो पर यानी दूसरे द्वारा आई हुई स्थिति, वो पर स्थिति है और हमारी जो है वो स्व स्थिति है, तो स्व स्थिति श्रेष्ठ है ना। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति है लेकिन स्व स्थिति के शक्ति से हम क्या नहीं कर सकते, बदल सकते है ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो ये कमजोरी है, ये माया पहले कमजोर बना देती है, संकल्प ही कमजोर कहलाती है बुद्धि में, नहीं वातावरण ही ऐसा है, ये बहुत है ना, ये तो होगा ना, ये तो होता ही है ना, इतने थोड़ी संपूर्ण हो गए। ये माया का रूप, पहले माया इस संकल्प व्यर्थ संकल्पों के रूप से बुद्धि में प्रवेश होती है और वो माया बुद्धि को कमजोर कर देती है और बाबा का साथ बुला देती है, फिर फेल हो जाती। फिर कहते हैं क्या करें, क्या करें, क्या पहले उसको आने ही क्यों दिया, दरवाजा खोल दिया और डाकू आ गया, फिर कहेंगे क्या करें डाकू चोरी करके चला गया, अरे तुमने दरवाजा खोला ही क्यों, बंद रखो ना। और बंद करने का रास्ता बाबा ने बहुत सहज सुना दिया है कि याद और सेवा ये डबल लॉक लगाओ, सिंगल लॉक आजकल नहीं चलता है, तो डबल लॉक यानी याद में भी बुद्धि बिजी रहे और सेवा में भी बिजी रहे। लेकिन सेवा ऐसी सेवा नहीं करो जो हमारे स्थिति को नीचे लाए, क्योंकि आजकल सेवा में माया बहुत आती है। थोड़ा भी सेवा की और किसने पूछा नहीं, बहुत अच्छी सेवा की, ये कहा नहीं ना, तो कहेंगे देखो बहन जी को हमारा कदर ही नहीं है, इतनी सेवा करके आया हूँ, न पानी पूछा न ये कहा कि तुमने बहुत अच्छी सेवा की। या कहेंगे क्यों मैं कोई कम हूँ, फलाना अच्छी कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सेवा में माया बहुत आती है। संगठन होता है ना, तो संगठन में सेवा होती है, अकेली तो होती नहीं है, तो संगठन के कभी स्वभाव संस्कार भी टक्कर हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पुराने संस्कार पैदा हो जाते हैं ना। बाबा ने अगली वाणी में कहा ना, तो ये बहुत अच्छा दिखाया है कि रावण को मारा तो सही, लेकिन जब तक उसके बीज को नहीं खत्म किया ना, तो एक सिर कटता था तो दूसरा आ जाता था। देखा है ना, सुना होगा ना रामायण की कथा में, तो एक सिर कटता था दूसरा पैदा हो जाता था। तो बाबा ने कहा यही है ना, एक माया के विघ्न को हटाते हैं तो दूसरा पहले ही तैयार होता है, दूसरा सिर निकल आता है। क्रोध को जीत लिया तो लोभ आ जाएगा, लोभ को जीत लिया अवमान आ जाएगा, तो यही सिर आते हैं ना रावण के। लेकिन बीज क्या है, जब उसको भी बीज का पता पड़ा कि इसके नाभि में ही विशेष है विष, उसको खत्म करो तो बेचारा मर गया। तो हमारा भी बीज का पता है ही नहीं, ऊपर ऊपर से टाल टालियां काट देते हैं हम और समझते हैं बस मेरे को तो जीत हो गई। लेकिन थोड़े समय के बाद जब ऐसी कोई परिस्थिति फिर से आती है फिर निकल आता है। तो इसीलिए बीज है देह अभिमान, देह अभिमान जब तक है तो कोई ना कोई जो है ना बीज पड़ने से वृक्ष फिर पैदा जरूर हो। इसीलिए पहले बीज को हमने खत्म किया है, देह अभिमान। देह अभिमान सिर्फ ये नहीं है कि मैं मेरे को अपने देह का भान, ये भी देह अभिमान, मैं फलाना हूँ मैं ये हूँ, मेरा ज्ञान में आने के बाद भी नशा चढ़ता है ना, मैं भाषण कर सकती हूँ, मैं सेवा में बहुत अच्छा हूँ, मैं किसको कन्विंस करने में बहुत अच्छा हूँ, मैं ये जो हार्ड वर्क होता है उस करने में बहुत अच्छा हूँ। अच्छा तो हूँ लेकिन ये देन दी किसने, अच्छा हूँ मैं ठीक है। कोई हार्ड वर्क में बहुत होशियार होता है, कोई भाषण में होता है, कोई किसको प्रश्न उत्तर में संतुष्ट करने में होता है, ये होता है, हर एक की विशेषता होती है, ब्राह्मण बने हैं तो विशेषता तो होगी, लेकिन ये विशेषता दी किसने, हमारी अपनी नहीं है, ये किसने दी, ब्राह्मण बने उसके बाद आप में आई ना ये देन, तो ये किसकी देन है, बाबा की। तो प्रसाद को कोई कहता है मेरा है? कहता है? चाहे उसने हलवे बनाने के लिए वो घी भी दिया हो, आटा भी दिया हो, लेकिन जब प्रसाद लग गया मूर्ति के आगे, तो कोई कहेगा आज मेरा प्रसाद है ये? गुरु का जो भी मूर्ति होंगी कहेंगे ना भाई मंदिर का प्रसाद। तो ये भी एक प्रभु प्रसाद है, जो भी विशेषताएं हमको मिलती है ये एक प्रभु प्रसाद है। उसके लिए हम सोचे मेरी विशेषता है, मैं ऐसा हूं, तो ज्ञान में आने के बाद फिर ये देह बहन आता है। पहले तो विकारों के वश थे, वो देह अभिमान अपने ढंग का था, पता ही नहीं था तो मैं देही हूं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद फिर इस प्रकार के देह भान आते, मैं हूं कुछ हूं क्या, मैं तो पपेट हूं। दागा हमारा किसके हाथ में है? शिव बाबा के हाथ में। वो नचा रहा है, मैं नाच रही हूं। तो कमाल बाबा की है या पपेट की है? दागे से नचाने वाले की कमाल होती है या पपेट की होती है? हाँ? पपेट माना कठपुतली जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, कठपुतली होती है ना, तो धागा वाला वो नचाता है उसको। तो धागा हमारा कहाँ है, किसके पास है? बाबा के पास। और हम तो वो नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम निमित्त बन के कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? देन सारी है बाबा की। तो बाबा की देन को मैं अपना करूं तो ये तो अमानत में ख्यानत हो गई ना, मेरा थोड़ी है ये। ये सब गुण बाबा ने हमको दिया, सारे दिव्य गुण मेरे में थे क्या पहले? लेकिन बाबा ने दिव्य गुण दिया, सेवा की विशेषता दी, चाहे किसको कौन सी भी विशेषता दी। और आप देखेंगे हर एक में अपनी अपनी विशेषता होती, कोई ना कोई विशेषता जरूर होती, नहीं तो बाबा ने अपना कैसे बनाया। चाहे आप में सफाई करने की भी विशेषता हो, लेकिन कोई ना कोई विशेषता जरूर होगी, और उस विशेषता के कारण ही बाबा ने आपको अपना बनाया। बाबा क्या कहते हैं, जब भी मिलते हैं बाबा तो क्या कहते हैं, सभी मेरे विशेष आत्माएं। कि कहते हैं नहीं, कोई विशेष है कोई नहीं है, ऐसे कहता है क्या? सभी को कहता है ना विशेष आत्मा। और हम लोगों को ही बाबा ने चुना है, देखो इतने करोड़ आत्माएं हैं और उसमें से हमको ही बाबा ने चुना है, तो जरूर कोई तो विशेषता है देखी ना बाबा ने हमारे में। लेकिन वो मेरी विशेषता नहीं है, वो प्रभु की दी हुई विशेषता है। हमको अपनी विशेषता का पता ही क्या था, अवगुणी थे ना, छिपा हुआ गुण बाबा ने आकर के प्रकट किया। जैसे बाबा देखो बोली दादी हमारी है ना, तो उसके मुरली में गायन करता है। हमारी बोली दादी देखो करती तो भंडारे का ही काम है, सेवा करती है ना, भाषण वाले का नाम नहीं होगा लेकिन बोली दादी का नाम आता है। क्यों? कि हमारी सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है, ज्ञान में भी है तो योग में भी है, धारणा में भी है, सेवा में भी है, सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर हम देही अवमानी हो करके निमित्त बन के सेवा करते हैं, स्थूल काम करते हैं, तो भी मेरे को 100 मार्क्स मिलेंगे। और अगर मैं सेवा नहीं करती हूँ, कर्मणा सेवा नहीं करती हूँ, नहीं मैं तो बड़ी हूँ छोटे छोटे ये काम करे, हम तो पुराने हो गए, अभी ये नौ का काम है, समझो ये मेरे में देहबान आ गया, तो कर्मणा में हमारी मार्क्स भी कम नहीं होनी चाहिए। स्कूल में कॉलेज में भी देखो, एक भी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम होती है तो क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकंड डिवीजन आ जाएगा ना। इसीलिए हमको सब सब्जेक्ट में निमित्त बन, हम निमित्त है ये पक्का करो। मैं नहीं करता हूं लेकिन मुझे बाबा ने निमित्त बनाया, तो जहां निमित्त भाव होगा ना वहां निर्माण होंगे आप। अगर निमित्त भाव नहीं है ना, मैंपन है ना, तो देहाभिमान जरूर होगा किसी भी रूप में। तो देहाभिमान का दरवाजा है मैंपन, और देही अभिमानी बनने का दरवाजा जो है वो है निमित्त भाव। कभी भी ये नहीं समझो मैं ये करता हूं, मैं ये समझता हूं, मैं खत्म हो गई, देह भान की मैं। हाँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बाबा का विशेष आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे नूरे रतन बनाया है, बाबा ने मुझे सिकिलदा बनाया, लाडला बनाया, आत्मा के नाते से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर का भान नहीं। अगर शरीर के भान में आ गए ना, तो फिर मास कम। मानो हम समझते हैं कि ठीक है, मैं जो करता हूँ वो यहाँ मिले मुझे, पूछे कोई तो। बाबा ने एक बारी कहा, तो अभी अभी बीज लगाया और कच्चा फल खा लिया, तो भविष्य में क्या बना आपका? फल पैदा हुआ, कच्चा ही खा लिया, पकने ही नहीं दिया। पकना है सत्युग में, फल वहां मिलना है, अभी कच्चा फल है और कच्चा फल ही आपने खाना शुरू कर दिया, तो क्या मिलेगा? भविष्य क्या बनेगा? जमा क्या होगा? होगा जमा? नहीं होगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं निमित्त भाव, और चेक करो, मैं काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन निमित्त भाव से कर रही हूँ, मैंपन तो नहीं आ गया, तो चेकिंग और क्या करनी है? यही करनी है ना। और निमित्त भाव में क्या है? बोझ नहीं है हमारे ऊपर, निमित्त है। करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त कर रही, तो जिम्मेवारी किसके ऊपर हो जाती है? बाबा के ऊपर ना। तो हम हल्के रहते, और हल्के होकर के कोई भी काम करो तो कैसा काम होता है? भारी होकर के भारी बुद्धि है, मानो मेरे को सेवा करनी है, लेकिन आज कोई सरकमटेंस के कारण मेरी बुद्धि बहुत भारी हो गई है, कोई बात ऐसी हो गई, तो मेरी सेवा कैसे होंगी? उस दिन अच्छी होंगी? क्योंकि भारी बुद्धि जो होंगी ना, तो वो निर्णय ठीक नहीं देंगी आपको, और उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सेवा करेंगे ना, वो सेवा मेहनत भी ज्यादा है और फल कुछ भी नहीं। जैसे पानी बिलो रहे हो, पानी बिलोड़ने से कभी मक्खन निकलता है क्या? तो मेहनत भी ज्यादा है और प्राप्ति कुछ नहीं। अंदर मन में खुशी नहीं होगी ना, मूंझा हुआ मनुष्य होगा ना भारीपन में। तो कभी बुद्धि भारी नहीं होनी चाहिए, न वायुमंडल से, न देह अवमान से, सदैव हल्के। बस बाबा करा रहा है। अभी देखो हमारी दादी के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी निमित्त साकार में है, तो वैसे बाबा ही करा रहा है। अगर बाबा नहीं कराता तो इतने आप आत्माएं यहाँ आ ही नहीं सकते, है बाबा की कमाल। लेकिन फिर भी साकार रूप में निमित्त कितनी जिम्मेवारी है दादी की, फिर भी दादी भारी लगती है? कभी लगती है आपको? सदैव ऐसे जैसे कुछ कर ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा दादी समझती है बाबा करा रहा है, मैं क्या कर रहा। तो बाबा के ऊपर जिम्मेवारी देने से देखो बहुत हल्की, कभी भारी देखा है आपने? और जिम्मेवारी कितनी है आपके पास? तो घर में होंगे चलो 15-20-50 हो परिवार के, होते नहीं है इतने, लेकिन चलो। और ये कितने हैं? 3 लाख। और फिर भी देखो हल्का, कैसे हल्का रहती है? कारण क्या? क्योंकि वो समझती है कि मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है बस। तो बाबा कहने से कितने हल्के हो गए। हमको याद है एक ब्रह्मा बाबा की बात याद आती है कि एक बारी देखो बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी हमेशा ये रहता था, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा बैठा है, बाबा जो कहता है वो मैं कहता हूँ। तो एक बारी क्या हुआ, यहाँ इंदिरा गांधी जब थी ना, तब इमरजेंसी लगी थी, आप लोगों को याद होगा। तो इमरजेंसी का टाइम था, और उस समय हमारी राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसके पास एक कोई रिपोर्ट गई। उस समय में क्या था, ये चीन और इंडिया की कुछ थोड़ी जमीन के ऊपर लड़ाई लग रही थी। तो एक बारी बाबा के मुरली में बाबा ने कह दिया था, तो ये देखो एक छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे इतना लड़ रहे हैं, कितने मर रहे हैं बेचारे, ये तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दो मुर्गियां लड़ती है ना, ऐसे लड़ रहे हैं। तो बाबा की मुरली चली थी, वो मुरली गवर्नमेंट के पास पहुंच गई, इमरजेंसी का टाइम था। तो वो जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो होते हैं ऑफिसर, वो मुरली लेकर के आए यहाँ। तो ये किसने चलाई है, ये देशद्रोही है, क्यों कहा है ये मुर्गियों के माफक लड़ते हैं, ये क्या, ये तो देशद्रोही है। तो उसको तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी में तो कोई पूछता ही नहीं है क्यों क्या। तो वो मुरली लेके आए यहाँ, तो हमारे भाई बहने उनसे मिले, उन्होंने कहा नहीं आप बताओ ये किसने मुरली चलाई है, उसके से हमको मिलना है और उसको हमको देखना है ये क्या बोला है, उसने देशद्रोही है ये, आप लोगों को पता नहीं है कि ये देशद्रोही की क्या सजा होती है, मतलब अपना जो रोब दिखाना था उनको वो दिखाया। तो बाबा के पास मिलने गए, तो बाबा को कहा कि ये जो मुरली है, मुरली तो नहीं शब्द बोला, तो आप तो देशद्रोही हो, सीधा सीधा बाबा के आगे जा करके बोला। तो बाबा ने बड़े धीरे से मुस्कुराते उनको दृष्टि मीठी देते हुए कहा, तो मैंने तो नहीं चलाई है ये मुरली। कहा किसने चलाई है, सब कहते हैं ये बाबा ही चलाता है इनकी मुरली। कहा मैं नहीं चलाता हूँ, मेरे में शिव बाबा आता है और वो मुरली चलाता है, वो मुरली चला के चला गया, मैंने थोड़ी चलाई। तो देखो, तो उसने कहा वो फिर कौन है, कहा वो तो निराकार है। कहा उससे कैसे मिले, कहा आप उस निराकार से तो निराकार होकर के मिल सकते बाकी ऐसे तो मिल नहीं सकते हैं। तो उसको उसने चलाई है, मैंने नहीं चलाई है ये। तो वो बेचारे चुप हो गए, कहते आपने नहीं चलाई, कहा नहीं मैंने बिल्कुल नहीं चलाई, ये तो शिव बाबा ने चलाई। तो उसको कैसे मना करे, तो कहा ठीक है अगर हम नहीं मिल सकते उससे तो आप तो मिलते हो ना। कहा तो कहा उसको आप तो कह सकते हो ना, तो ये रॉन्ग है। कहा मैं कह दूंगा, बाबा ने कहा मैं कह दूंगा भाई ये ऐसे ऐसे है, मैं कह दूंगा, बाकी वो तो चला गया, अभी मेरे पास तो नहीं बैठा है, वो चला गया, ये बाबा चलाता है मैं नहीं चलाता। तो देखो, और वो बेचारे एकदम समझ ही नहीं सके, अभी पकड़े किसको, ब्रह्मा ने तो चलाई नहीं तो किसको पकड़े, अभी शिव बाबा को तो पकड़ ही नहीं सकते, तो क्या करे। तो वो चुप हो गए, फिर बाबा ने उसको उनको बहुत मीठी दृष्टि दी, थोड़ी बातचीत की, बच्चे बच्चे कह करके बात की बाबा ने, तो वो तो बेचारे ठीक हो गए, जो जोश था उनका वो तो खत्म हो गया। और फिर कहे बाबा जी, फिर हाथ जोड़ के बाबा जी आप उस बाबा जी को कह देना जरूर कि ये ठीक नहीं। तो देखो बाबा का बचाव किससे हुआ है? और ये पक्का था ना बाबा को, अगर बाबा कहते हाँ मैंने कहा है तो रॉन्ग है ना, और बाबा तो कहता भी नहीं है, चलो कभी ब्रह्मा बाबा कुछ शब्द बोल भी देता है बीच में, लेकिन ये अथॉरिटी के बोल तो शिव बाबा के सिवाय ब्रह्मा बाबा भी नहीं बोल सकता। तो बाबा ने कहा मैंने बोला ही नहीं, राइट है ये बात। तो देखो बाबा को कितना बाबा याद था प्रैक्टिकल में, और बचाव भी किससे हुआ, बाबा को आगे रखने से कितना बचाव हो गया, नहीं तो भाई बहन तो सोच रहे थे पता नहीं आज क्या होने वाला है, क्योंकि इमरजेंसी थी ना। लेकिन बाबा ने ऐसा राइट उत्तर दिया तो वो बेचारे चुप हो गए, एकदम शांत होके बाबा ने टोली खिलाई, बाबा ने कहा सारा घर देखो, ये करो, बस खुश होके गए। लेकिन बाबा होते हुए भी बाबा को साथ रख तो कितनी सेफ्टी का साधन है। और हम लोग हम कहते रहे मैंने किया, ये देखो ब्रह्मा बाबा भी मैं नहीं कहता। और हम अगर मैं कहते हैं तो एक नहीं भाषण करते हैं तो मैं कौन करता है? हा? बकरी करती है ना मैं। तो ये मैं जो है ना ये बकरीपन है, बकरा या बकरी। और इसीलिए बेचारे बकरी कोई बलि चरा देते हैं, मैं कोई बकरी चराना है ना हमको शिव बाबा को, ये मैं की ही तो बलि चरानी है ना। उन बेचारों ने मैं करने वाले बकरी को ही फंसा दिया। लेकिन है वास्तव में ये मैंपन जो होता है ना ब्राह्मण आत्मा में भी होता है, अज्ञानियों में भी होता है। तो ये जो मैंपन है ना ये बहुत धोखा देता है देह व मार्ग का। इसीलिए इसको बलि चरा दो बस। और धक से वहां भी देखो ना, वो जब बलि चराते हैं कहीं काली के मंदिर में कहां कई जगह पर चराते हैं, तो वो कहते हैं अगर एक दक से नहीं मरा ना तो वो महाप्रसाद नहीं है, अगर चीचला के मरा ना तो कहते हैं महाप्रसाद नहीं। तो आप भी धक से इस मैंपन को खत्म करो। और जब तक मैंपन को आपने खत्म नहीं किया है ना, अब बकरी देखो उसका शीश हमेशा नीचे होता है। और शेर ऐसा करेगा कभी? वो तो बेचारी नीचे ही देखती रहती है। तो ये बकरीपन नहीं, हम तो शेर है। तो इसीलिए हमारा हमेशा स्थिति ऊंची हो, नीचे नहीं। नीचे अगर आएंगे ना फिर ऊपर चढ़ने में ही टाइम चला जाता है। एक बारी बाबा ने बहुत हंसी की बात सुनाई थी, कहा कई बच्चे कहते हैं हम 4 घंटे योग में बैठे थे, बहुत योग लगाया, 4 घंटे बैठे थे। लेकिन 4 घंटे योग में थे या युद्ध में भी थे? तो बाबा ने कहा युद्ध करते युद्ध है, 2 घंटे योग होगा 2 घंटा युद्ध होंगी। लेकिन कहेंगे क्या 4 घंटे योग में बैठे? तो युद्ध को थोड़ी योग कहेंगे। मानो कोई व्यर्थ संकल्प आया और कोई ऐसी बात आपके पास आ गई और उसको मिटाने की आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो उसको योग कहेंगे क्या कि युद्ध कहेंगे? तो युद्ध में भी तो टाइम जाता है ना। और युद्ध में क्या होता है, मजा थोड़ी आता है। योग लगे बस बाबा से रूहरयान कर रहे हो, बाबा से मिलन मना रहे हो, शक्तियों की अनुभूति कर रहे हो, उसमें तो है मजा। और अगर युद्ध ही करते रहेंगे, एक युद्ध करेंगे, एक संकल्प व्यर्थ को मिटाएंगे, फिर दूसरा आ जाएंगे, दूसरे को मिटाएंगे, तीसरा आ गया। तो युद्ध में क्या होता है, थकावट होती है और फिर मजा नहीं आता है। कई बार तो युद्ध में कोई बात हो जाती है ना, मानो घर में या अपने ब्राह्मण परिवार में कोई बात हो गई, तो उस दिन आप योग में बैठेंगे ना तो शिव बाबा के बदले पहले वो बात आएंगी, सोचेंगे शिव बाबा को याद करें, लेकिन वो बात आपसे हटेंगी नहीं और उसकी युद्ध करते रहेंगे। और युद्ध करने में क्या है, कभी कभी तो थक जाते हैं ना, तो कहते हमारा तो भाग्य ही नहीं है, योग लगता ही नहीं है, कितनी मेहनत की है। लेकिन क्यों नहीं लगता, उसका कारण क्या है वो सोचो। कारण ये होता है तो कोई ना कोई बुद्धि के ऊपर हमारे बोझ होता है बात का, या पुराने संस्कार के इमर्ज हो जाते हैं, उसका बोझ होता है। इसीलिए हमारी बुद्धि बाबा के बजाय उस बात की तरफ आ जाए, क्योंकि बोझ देखो तराजू में कौन सा झुकेगा कौन सा तरफ, जो बोझ वाला होगा ना, जो हल्का होगा वो तो नहीं झुकेगा ना। तो ये भी ऐसे ही, कोई ना कोई बुद्धि में बोझ होता है तो कितना भी बाबा को याद करेंगे आपकी बुद्धि फिर उस बोझ के तरफ ही, क्योंकि लगाव जहाँ होता है वहाँ झुकाव, बुद्धि का झुकाव आपका उस तरफ जाएगा, शिव बाबा की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, एक तो बुद्धि को हल्का रखो। और हल्के रखने का आधार क्या है, ये मैंपन छोड़, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, बस निमित्त भाव। और जितना निमित्त होंगे ना उतना आप निर्माण स्वयं ही रहेंगे, अवमान नहीं आएगा आपको, क्योंकि निमित्त भाव में बाबा कराता है ना, मैं नहीं करता, तो निर्माण रहेंगे, क्रोध नहीं आएगा। जो निर्माण रहता है उसमें क्रोध नहीं आता है, नहीं तो थोड़ी बात ही होगी, थोड़ी इंसल्ट किसने की, थोड़ा पूछा नहीं, थोड़ा ये नहीं किया, तो बस अवमान आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। क्या समझते है, हम भी कम नहीं है, टीचर टीचर है तो मैं कोई कम हूं, मैं भी बाबा का बच्चा हूं, ये क्रोध आ जाएगा। इसीलिए निर्माण बनने के लिए यही युक्ति सदा साथ रखो कि मैं निमित्त, और बाबा को सामने रखो हर बात में, बाबा बाबा बाबा। देखो कल वो गवर्नर की वाइफ आई तो बाबा ने उसको कहा, तो तुम बस और कुछ नहीं करो, बस सारा दिन ये सोचो कि मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो कहती है, बहन जी मैं रात्रि को सोई तो सारा टाइम मेरी जैसे टेप चल रही थी अंदर, मेरा बाबा मेरा बाबा। तो देखो उसने भी प्रैक्टिकल किया। तो हम तो पुराने हैं तो हमको क्या याद रखना चाहिए, हा? बाबा याद रखना चाहिए या मैं, हा? बाबा। और इतना बाबा प्यारा है, इतना मीठा है, इतनी प्राप्ति कराता है, प्राप्ति वाला कभी भूलता है, भूलता है कभी, तो बाबा क्यों भूले, बाबा तो सब प्राप्ति कराता है। तो ये स्मृति रखने से आप बिल्कुल ही ठीक रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।